कहो आप वृंदावन में पधारी। कृष्ण राजी हुए, उन्होंने अपने मनोरथ पर उनको बैठाया और सब गोपियां उन मनोरथ से खेत करके अपने हाथों से अपने मन से
चुड़ी गोपी मनोरथे मनमथेर मनमथे नाम धरे मदन मोहन,
और वहां से फिर वृंदावन में आए और गोपियों को कभी नहीं छोड़ा, अंत तक बने रहे। हम लोगों ने देखा नहीं, सब गोपियों के साथ ही प्रकट लीला को अप्रकट लीला में बदल करके नित्य रूप में वृंदावन में ही पधारे रह गए। दूसरी बार सुनते हैं कि कभी कृष्ण जब यहां से द्वारका चले गए, उनके विरह में गोपियां सब तड़पने लगी। राधा जी तो उस विरह को सह न सकी और खेलन वन में गई। खेलन वन माने खेलन तीर्थ अर्थात
बिहार वन शेरगढ़ के पास,
शेरगढ़ के पास नहीं, शेरगढ़ ही खेलन वन। वहां पर राधा कृष्ण खेलते थे, वहीं पर परस्पर का बिहार वन है, वहां पर उपस्थित थे। और वहां पर हा कृष्ण कहते हुए जमुना में कूद पड़े और उसके बाद में किसी ने उनको देखा नहीं। इसके बाद में किंतु ये इस कल्प की बात नहीं है, ये दूसरे इस कल्प में कृष्ण द्वारका से आकर के और सब गोपियों को अपने साथ लेकर के गोलोक वृंदावन में गए। ये पहले एक कल्प की बात थी। तो उसमें ललित माधव वाला, तो वो राधा जी विरह में डूब करके और उसमें कूद गई यमुना में। विशाखा जी यमुना है, विशाखा जी भी उनके साथ हैं और दोनों, विशाखा के पिताजी कौन है? सूर्य। यमुना जी है ना, वो अपने पिता के घर में चली गई और राधिका जी को अपने साथ में ले गई, साथ में वहीं पर। और वहां से नौ वृंदावन में द्वारका में पहुंची ललित माधव, जिसका श्रवण करके रघुनाथ दास गोस्वामी हाय हाय करके रोते 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 उस पुस्तक को छोड़ते नहीं थे ललित माधव। रघुनाथ रूप गोस्वामी ने देखा जैसे ये तो पुस्तक ही नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने एक और पुस्तक लिखी दान के लिए कौमुदी, और लिख करके उनको दिया। पहले हाथ की ही पुस्तकें लगती थी और आंसुओं से वो भीज करके वो पुस्तक भी धुल रही थी ललित माधव भाई। इसको दिया का ये पहले इसको पढ़ लो और हमको उसमें दो चार शब्द लिखने हैं, तब तक लिए लौटा दो। बस उनसे मांग लिया और मांग करके छलबाल से ले गई। ये तो विरह में डूबता डूबता मर जाएगा। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी की बड़ी चिंता रही, ये मर ना जाए तो साधन भजन नहीं होगा, इसलिए वो लोग सब समय इनका देखभाल करते थे। बाघ आ गया उनके घाट से पानी पी रहा है, कहा जी अच्छा कुटी बना दिया अपने आप, कहा जी हमारी शपथ है तो ये इसमें रहो, सब समय देखभाल कर। शरीर साधन भजन के लिए एक साधन है, भगवान का दिया हुआ मंदिर है। यदि हम लोग बीच ही में छोड़ देना तो फिर भजन साधन कुछ भी नहीं होगा, इसलिए शरीर को भी साथ साथ में कुछ देखना होगा। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी के समान हो जाएंगे, जब शरीर चिन्मय हो जाएगा, तब तक कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं, किंतु जब तक साधन भजन करना है ऐसा संग मिल करके भी। और यदि शरीर चला गया तो तब फिर साधन भजन नहीं होगा, इसलिए रूप सनातन जी रघुनाथ दास गोस्वामी को बड़े पुत्र और छोटे भाई और शिष्य की तरह में पालन पोषण करते हुए उनको ये सब शिक्षा देते। तो वो ललित माधव नाटक बहुत ही करुण रस का है। तो उस समय में जब डूब करके चली गई ऊपर, तो कृष्ण से नौ वृंदावन में जाकर के मिली थी सत्यभामा के रूप में, इतनी सुंदरी इतनी मधुर स्वभाव वाली, कुछ बाम्य भाव वाली, मधु स्नेह का कुछ आभास उनमें कि राधिका जी से उनकी तुलना होती थी, इसीलिए उनसे विवाह किया था जो राधिका की स्मृति बनी रहे, नहीं तो वो विवाह शादी कुछ नहीं करते। तो उस समय में एक दिन रुक्मिणी जी ने उनको देखा, सत्यभामा जी को। सत्यभामा ने वही राधिका जी, और देख करके कुछ इनको बड़ा ऐसा लगा, यदि कृष्ण को ये मिल जाएगी तो कृष्ण हमको आदर नहीं करेंगे, इसलिए वो ना चाहती थी कि कृष्ण से ये मिले। इसलिए उसको बुला करके और बड़े प्यार से उसको रख दिया, कैसे रखा,
छिपा कर,
आबद्ध करके घर, इसको पता ना चले और कृष्ण से मिलने न दे, यदि मिल जाएगी तो फिर कृष्ण हमको भूल जाएंगे, इसलिए उनके अंदर में ऐसी भावना हुई। कहो जो आप प्राकृत जगत में भी ऐसी भावना होती है, उसी की छाया जगत की भावना है, वहाँ पर शुद्ध होता है, यहाँ पर विकृत विकृत होता है, तो वो मिलना नहीं देना चाहती। किंतु काज ने कैसे उस सखियों की सहायता से और उनसे कहीं भेंट हो गई, और कृष्ण मधुमंगल और वहाँ पर और दूसरे लोगों की सहायता से राधिका जी से उनका कुछ संयोग थोड़ा सा स्थापित, और अंत में जब इन्होंने कठोर शासन किया, रुक्मिणी जी ने दर्शन नहीं करने देंगे, तो उन्होंने कहा ये तब तो हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे। इसलिए समुद्र के किनारे अर्थात यमुना के किनारे नव वृंदावन में उपस्थित हुई और हम डूब करके मर जाएंगे, जा रही हैं इतने में ऐसे उन्मादग्रस्त हो गई हैं। कृष्ण ने दोनों हाथों से उनको पकड़ लिया, वो समझती हैं ये काला सर्प है, हाथ भी बहुत ठंडा सोचते हैं ये काला सर्प ठंडा होता है, तो वो समझ गई जैसे ये काला सर्प है। किंतु आज क्या जाने क्या भगवान हमारा उल्टा है, जो हमें काट क्यों नहीं रहा, अभी काट लेता और मैं डूब जाती मर जाती उनके विरुद्ध। किंतु आज सांप भी आज ऐसे हो गए जो आज काट नहीं रहे। इतने में कृष्ण ने सामने से आकर के उनको दर्शन दिया। इसके बाद में रुक्मिणी भी इसको देख रही थी, वो भी बड़ी उदार हो गई और फिर पीछे से आकर के उनकी शादी। ये दो जो बातें हमने कही इसलिए कही कि राधा जी का कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र गई, और कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गमन का भी इसमें उल्लेख अंततः कुछ मिलता है, और इधर कहते हैं कि कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़ करके जाते नहीं, और भागवत इत्यादि में राधा जी का द्वारका जाने का कोई उल्लेख नहीं, इसका सामंजस्य कैसे, तब तो ये गलत है ठीक है। इसके लिए कहते हैं जैसे कृष्ण के प्रकाश बहुत प्रकार के होते हैं, द्वारका वाले कृष्ण, मथुरा वाले कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण, ये अलग अलग हैं ना? उसी तरह से राधा जी जो कुरुक्षेत्र में गई एक राधा है, और जो द्वारका में गई वो एक राधा, और वृंदावन में जो है ब्रज में वो एक, जो कृतिका नंदिनी अथवा विश्वानंदिनी जो राधिका जी हैं, वो यथार्थ सब अंशों की अंशिनी राधा जी, वो वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जा सकती, इसलिए कृष्ण भी कहीं नहीं जाएंगे। उनके दो प्रकाश होते हैं, एक होता है संजोगिनी और एक होता है वियोगिनी। संजोगिनी कहते हैं कामा, कामा को संजोगिनी, काम से मिलने वाली ने? और वियोगिनी है बामा, जो वियोग से। इसमें राधा जी जो कृतिका सुंदरी की लड़की हैं, विश्वान महाराज की लड़की हैं, और वो स्वयं ह्लादिनी शक्ति की मूल हैं, वो कभी भी वृंदावन ब्रज को छोड़ करके नहीं जाए, इसलिए ये कहते हैं कि मैं वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा, उनको पक्का बात। किंतु एक स्थिति है वियोग की स्थिति में, अर्थात इस स्थिति में वियोगिनी की स्थिति में यमुना में डूब गई, अब डूब करके फिर नौ वृंदावन में गई, और वहाँ केवल कृष्ण मुरलीधर श्याम सुंदर से ही उनको भेंट हुआ, जब उन्होंने हाथ से पकड़ा उस समय में द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में नहीं स्पर्श किया राधा जी का, वो तो श्याम सुंदर के रूप में ही उनको स्फूर्ति हुई, क्यों वहां पर भी भेंट फेंट कुछ नहीं, स्फूर्ति वहां पर होती है, उस प्रकार से ये स्फूर्ति हुई और श्याम सुंदर बंशीधारी मोर मुकुट के रूप में उनको स्पर्श। तो ये है वियोगिनी, ये वियोगिनी राधा जी हैं, कृष्ण से पीछे से द्वारका में मिलती हैं, किंतु उस स्वरूप से जो राधा जी हैं कृतिकाश ये कभी भी नहीं जाएंगी, इसलिए उनकी जो अपनी किंकरी होगी, किंतु वियोग में यदि ऐसा हो जाए कभी पागल हो जाए, और पागल होने पर कोई भी मति की स्थिरता नहीं रहती, उस समय में ऐसा हो सकता है कि चली भी जाए, उसके लिए कहते हैं कि तब मैं चले जाऊं, अर्थात तो राधा से संबंध नहीं होगा उस स्थान को और उस वेश से, उस किसी भी चीज से हमको कोई भी जरूरत नहीं है, राधा जी हमारी स्वामी है, राधा जी से ही हमारा संबंध है, इसी के लिए वो कह रहे हैं शक्ति संजोगिनी कामा बामा शक्ति वियोगिनी लादनी कृतिता पुत्री चैव राधा प्राण ब्रजे। ब्रज में राधा तीन प्रकार की हैं, एक संजोगिनी अर्थात कामा, बामा अर्थात वियोगिनी, और एक है कृतिका जी की पुत्री। मम प्राणेश्वर कृष्ण तत्वा वृंदावनम क्वचित क्वचिन नैव जाति इति जानाति कृति। कृतिका सुंदरी की लड़की जो है श्रीमती राधिका जी जानती हैं कि राधा जी वृंदावन को छोड़ करके कदापि कहीं नहीं जा सकते, उनको दृढ़ विश्वास है, इसलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं यदि कभी उनको उन्मादग्रस्त हो गई, गतो उन्मादय राधा स्फुरति हरिणा श्लिष्ट हृदय, कहते हैं कि यदि उन्माद बसता, यदि ऐसा कभी संभव नहीं है, किंतु उन्माद में उनकी स्फूर्ति यदि हो, क्या स्फूर्ति, कृष्ण द्वारका है और हमारे बिना वो रह नहीं सकते, तो उसमें उन्माद अवस्था में उनकी स्फूर्ति होती है सोए सोए कि कृष्ण द्वारका है, हम भी द्वारका हैं और वो मुझे आलिंगन कर रहे हैं, ये बस उनकी स्फूर्ति होती। उस समय में उनकी सेवा के लिए, राधा जी की सेवा के लिए बिना बुलाए तदाहम तत्रैव उद्धतम मति, उद्धत मति हो करके पागल हो करके मैं भी पतामि ब्रजपुरा, तो मैं ब्रजपुर से पता गरुड़ की भांति उनसे भी तीव्र गति से द्वारका में मैं समुद्दीय स्वांताधिक गति खगेंद्राति जवा, गरुड़ से भी अधिक गति से मैं द्वारकापुरी में पहुंच करके उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा, इस तरह से ये प्राप्त। अनादि कितना बजा, साढ़े छः आज यहीं तक रहे, रात अधिक हो जाएगी, कल से फिर हम लोग इसको आरंभ, हम लोग 9 तारीख को हमारे गुरु जी की व्यास पूजा होगी आविर्भाव तिथि, पहले तो यहीं पर करता था किंतु वृंदावन से साधु वैष्णव को आने में कुछ कष्ट होता है, इसलिए उन लोगों का भी ऐसा आग्रह है, जैसे आप यहाँ पर ताप का मठ ही है तो पहला दिन वहाँ पर करें, तो पहला दिन 9 तारीख को हम लोग वहाँ पर ये गुरु जी का वहीं पर उत्सव मनाएंगे, गुरु तत्व के संबंध में भी बतलाएंगे, और ये 9 तारीख को, और फिर 10 तारीख को हम लोग लौट आएंगे, 11 तारीख को हमारे गुरुजी के गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का यहाँ पर व्यास पूजा हम, जिसको अत्यंत अधिक असुविधा हो तो वो तो नहीं जा सकेंगे, नहीं तो बाकी सब लोग आप लोग वृंदावन में बता रहे हैं, और वहीं पर खूब सुंदर रूप से उनका ये सब हम लोग पालन करेंगे, वहीं पर सब लोग साथ आएंगे, जिनको परिक्रमा देने की इच्छा होगी वो अपनी परिक्रमा भी दे आएंगे, और 11 तारीख को सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, यहाँ पर ही उनका व्यास पूजा होंगे 3 दिन तक वंशा कल के करेंगे।
ये देखकर के बागरायणी व्यास जतन सुखदेव गोस्वामी अत्यंत स्तंभित हो गए और फिर कहने लगे, पयांस पाशाम अपिवत जासाम अपिवत पुत्र स्नेहे सु स्नेह सुता अंगलम, पयांस जासाम अपिवत पुत्र स्नेह स्नुत अन्नलम, भगवान देवकी पुत्र कैवल्य आद्यखिला अर्थद कैवल्य आद्यखिला। देवकी जो पुत्र हैं कैवल्य मुक्ति तक भी, कैवल्य तक अखिल समस्त चीजों को जो सबको देने वाले हैं, उन लोगों का ये ऐसा होते हुए भी पयांसी जासम अपीव बड़े स्नेह से स्नुत होकर द्रवित होकर के उनका दूध दिया, किनका, गायों का और माताओं का दूध दिया, कोई जसोदा जाकर नहीं, उन सब का पिया। और तासम अपीवतम कृष्ण कुर्वती नाम सुतेक्षण सुत इक्षण सुत की भांति सब समय उनको देख रही हैं, और उनमें भी पुनः कल्पते राजन संसारो अज्ञान सको, ऐसे जसोदा मैया हैं जो उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं, इनको क्या कभी अज्ञान से आया हुआ संसार कभी उनको प्यार सकता है, कभी नहीं प्यार सकता। तो उन गोपियों को और गायों की तो बात क्या है, और जो भक्त हैं उन्हीं को नहीं जाता, तो जसोदा जी को, इसलिए जसोदा जी को कोई ऐसा न समझ सके कि केवल साधारण एक गोपी थी और स्तनपान कराया और बिना बूझे सूझे कृष्ण को बांधने के लिए गई, ऐसा कोई मत समझ ले, इसके व्याख्या हम लोग कल पंचा कल प्रोफेसर कल के एकादशी, कल एकादशी है कल श्रीनिवास जी के बाहर आते हैं, अभी आएंगे शायद देरी हो गई किसी कारण से, इसलिए कल उनके यहाँ कीर्तन होगा, आप लोग सब पढ़ाए भजन से ज्यादा ही
अनेक स्वरूप अनेक स्वरूप।